आप सबका इस संध्याकालीन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। विषय बहुत ही सुंदर है क्योंकि हम सबके जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं छोटी बड़ी बातें आती अवश्य हैं। यदि ये कहा जाए कि नाविक सागर में उतरे और इस कामना के साथ उतरे कि सागर में कोई लहर ही ना हो, तो ये मानना कहना बेईमानी होगी। सागर है तो लहरें अवश्य हैं, जीवन है तो समस्याएं अवश्य हैं। कभी समस्याएं छोटी हैं तो कभी बड़ी हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी समस्या को भी कैसे छोटी बनाया जा सकता है, कैसे उसे सहज रूप से पार किया जा सकता है, आज इस सुंदर विषय पर चर्चा, बहुत ही प्रैक्टिकल सी चर्चा है। क्योंकि महत्व रखता है कि व्यक्ति चीजों को देखता कैसे। सत्या नडेला जी जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया था कि रेस्टोरेंट में एक बार वो बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि सभी बहुत शांति से अपना अपना व्यंजन खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तभी अचानक उनके पास के टेबल में जो बैठी हुई महिलाएं थीं बहुत जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे। लोगों को लगा कि हुआ क्या, आखिर इतनी शांति से सब कुछ चल रहा था। हुआ ये था कि एक कॉकरोच आ गया था वहां पे, और उस कॉकरोच को देख करके वो महिलाएं बड़ी जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। आमतौर पर हमारी बहनें थोड़ी परेशान हो जाती हैं चीजों को देख करके। वेटर आया, उसने उस कॉकरोच को पकड़ा और रेस्टोरेंट से बाहर फेंक आया। तो सत्या नडेला जी ने इस बात की चर्चा की कि देखिए, चीज एक ही है, सिचुएशन एक ही है, बात एक ही है, लेकिन दो लोगों के देखने का तरीका अलग अलग है। एक के लिए बहुत बड़ी समस्या है, भीमकाय समस्या, और एक के लिए बहुत ही नैनो सी प्रॉब्लम, अर्थात छोटी सी बात है। हम भी चीजों को कैसे देखते हैं ये बड़ा महत्व रखता है, और आज इसी पर ये चर्चा है कि कैसे बड़ी से बड़ी बात को भी सहज और छोटा कर सकते हैं हम। और इसके लिए आज जो पैनल डिस्कशन है, मैं आमंत्रित करूंगा हमारी जो पैनलिस्ट हैं आज के। सबसे पहले आदरणीय सूर्य भाई जी को मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर। आप सभी उन्हें जानते हैं, टेलीविजन पे आप उन्हें देखते रहते हैं। आप बहुत ही प्रसिद्ध, मैं कहूंगा वक्ता हैं, जो सारे संसार के लोगों को समाधान देते हैं, उनके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय भ्राता जी को, जो 1964 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और 68 से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं सारे विश्व में दे रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जिनका नाम ही सूर्य है, वो अंधकार को सचमुच दूर भगाने वाले हैं, चाहे वो जीवन की समस्याएं हैं या बातें हैं। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, जो IIT बॉम्बे में बायोसाइंस और बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर आशुतोष जी को, हम तालियों से उनका भी अभिनंदन करते हैं। बहुत सारे PhD स्टूडेंट्स को आपने गाइड किया है। 2019 अर्थात इसी वर्ष आपको NMRS प्रोफेसर सुब्रमण्यम लेक्चर अवार्ड से भी नवाजा गया है, उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से हम इन्हें बधाई देते हैं। और ऐसे ही अनेक अवार्ड आपको प्राप्त हों ऐसी कामना करते हैं। आमंत्रित करता हूं मैं ब्रह्मा कुमारी सरोज दीदी जी को, जो कि दिल्ली से हमारे बीच पधारी हुई हैं। दिल्ली में वसंत कुंज, द्वारका और संबंधित जो ब्रह्मा कुमारी के केंद्र हैं, उनका आप कुशल संचालन करती हैं। दिल्ली के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा आपको एक्सीलेंट सर्विस अवार्ड से भी नवाजा गया है। पिछले 42 वर्षों से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से आदरणीय सरोज दीदी का भी अभिनंदन करेंगे। और ब्रह्मा कुमारी एकता बहन जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा, जो कि पिछले 22 वर्षों से विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और स्पार्क विंग जिसमें आप सब पधारे हुए हैं, उसकी सभी एक्टिविटीज में आप बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। और अभी अगस्त में ही आपने जापान में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर भी प्रेजेंट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी हो। और ऐसे ही अनेक पेपर आप प्रेजेंट करते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। हमारे सभी जो पैनलिस्ट हैं वो मंच पर उपस्थित हैं, मैं इनके लिए यही कहूंगा कि सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए आपके जीवन में खुशियों की बहार। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ होकर एक हम आए करें हमारे सभी पैनलिस्ट का तालियों से वेलकम। तो जोरदार तालियों से हम एक बार पुनः अपने पैनलिस्ट का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप अब अभ्यस्त हो चुके हैं, हम अपने सभी कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर की स्मृति के साथ करते हैं। तो 3 मिनट हम सब ध्यान में बैठेंगे, परमात्मा की याद में, पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।
कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
इस गीत ने तो हम सबके अंदर उत्साह भर दिया। ये भी कतई नहीं कहना है कि हमारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि ईश्वर जो सबसे बड़े हैं, हम सबके परम पिता हैं, यदि वो हमारे साथ हो लेते हैं तो समस्याएं तो नगण्य हो ही जाती हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगा कि आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका गुलदस्तों से और बैज से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये हमारी सुंदर भारतीय परंपरा है कि हम स्वागत और सत्कार में बिल्कुल पीछे नहीं रहते, और यहाँ से जो एक प्यार, एक सद्भावना और सम्मान एक दूसरे के लिए पैदा होता है वो तो सचमुच एक सूत्र में हमें बांध कर रखता है। ये स्वागत केवल पैनलिस्ट का नहीं, आप सबका भी है, इसलिए तालियों से आप इसमें अवश्य अपना योगदान देंगे। आप सबका भी बारंबार अभिनंदन है, स्वागत है। शुक्रिया बहनों का। मित्रों, जैसे मैंने शुरुआत की थी, बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में इस बात का कि हम जीवन को कैसे जी रहे हैं, जीवन में आने वाली बातों को कैसे देख रहे हैं। एक व्यक्ति किसी घटना को, किसी परिस्थिति को देखकर आनंद ले सकता है तो दूसरा व्यक्ति उसी में नर्वस हो सकता है। मानसून का समय है, बरसात हो रही है, आप जानते हैं कि एक व्यक्ति बारिश में भीगता है उसका भरपूर आनंद उठाता है और दूसरा वहीं डरता है और सोचता है कि मैं बारिश में भीग जाऊंगा तो कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। ऐसे ही जीवन में तमाम जो बातें और परिस्थितियां हैं, उन बातों और परिस्थितियों में हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, किस प्रकार हम चीजों को देखें, बातें यदि आती हैं तो कैसे उनके सहज समाधान की ओर बढ़ें, इन्हीं बातों को आज हम अपने पैनलिस्ट से सुनेंगे, जानेंगे उनके अनुभव से। ये हम सबके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है और अवसर है, क्योंकि सचमुच जीवन में जो बातें आ रही हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हम तलाश करते हैं एक ऐसे मार्गदर्शक के जो हमें सही सही मार्ग दिखा सके। और आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं ये इतने रिच हैं इस विषय में, अपने अनुभव से हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। तो आदरणीय भ्राता जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। भ्राता जी, आज का जो विषय है जाइंट प्रॉब्लम एंड नैनो सॉल्यूशन, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? चीजें तो हमें बहुत बड़ी लगती हैं, क्या उसका समाधान सचमुच ऐसा छोटा छोटा हो सकता है जो बड़ी समस्या को भी सहज कर दे?
ओम शांति। ताला बड़ा होता है, चाबी छोटी ही होती है, बस डिपेंड करता है कि हम सीधा घुमाएं या उल्टा। तो समस्याओं के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण कैसा है, जैसी बात हो रही है। कुछ लोग समस्याओं को चैलेंज मानते हैं, और मैंने ये देखा, चाहे अपने अनुभवों से चाहे दूसरों के कईयों के अनुभवों से, कि जो समस्याओं को चैलेंज मानकर विचलित नहीं होते, उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, उनका विवेक जागृत हो जाता है, और वो इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि हर समस्या उन्हें चैलेंज नजर आती है, सहज भाव से वो उसे पार कर लेते हैं और इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। हम यदि शक्तिशाली हैं, जैसा कहा, बारिश हो रही है, कोई एंजॉय करेगा, किसी को बुखार हो जाएगा, हम यदि शक्तिशाली हैं तो समस्याएं कमजोर हैं, और अगर हम कमजोर हैं तो किसी ने हमें दो शब्द भी कह दिए, हमें लगता है बहुत बड़ी समस्या आ गई आज तो जीवन में, उसने मुझे ऐसा ऐसा बोल दिया, जबकि हम उसकी बातों को मुस्कुराकर भी पूरा कर सकते हैं। तो वास्तव में समस्याएं, चाहे बड़ी हो या छोटी, एक संकल्प के द्वारा, एक अपनी सुंदर धारणा के द्वारा हम उसको समाप्त कर सकते हैं। इसलिए बड़ी समस्याओं का छोटा सा ही समाधान होता है।
शुक्रिया भ्राता जी। ताला बड़ा लेकिन चाबी छोटी, सचमुच बहुत पते की बात है। हाँ, उस चाबी को आज हम अवश्य अपने इन पैनलिस्ट से लेकर के जाएंगे। आशुतोष जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है, जैसे भ्राता जी ने कहा कि बातें बड़ी भले हों लेकिन उसकी उसका जो समाधान है छोटी होती, आपके जीवन में अपने फील्ड में रहते हुए क्या कोई ऐसा अनुभव आया कि बात बहुत बड़ी सी लग रही थी लेकिन सचमुच कुछ ऐसा किया गया जिससे वो सहज रूप से समाधान में बदल गया?
एक्चुअली मैं विज्ञान का शिक्षक और छात्र हूँ दोनों, क्योंकि अभी भी सीखता हूँ। विज्ञान में हर समय समस्याएं आती ही रहती हैं, और कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती अगर सोचा जाए। हाँ, उस समय लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, और कई बार ऐसा रिसर्च के फील्ड में होता है जब हम उलझ जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जटिल चीजें लगने लगती हैं, लेकिन तब आपको एक पॉज लेना होता है, एक रुकना होता है, थोड़ा सा पीछे आकर फिर से सोचना होता है कि हम कहां गलती कर रहे हैं। अगर वो चीज सही में पकड़ में आ गई तो उसका समाधान बहुत ही सरल होता है। और टेक्निकल भाषा में मैं नहीं जाते हुए मैं बता रहा हूं, बहुत सारी जैसे हमारे रिसर्च प्रॉब्लम होते हैं जो कई बार आते नहीं है, तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसका ऐसा लगता है कि शायद इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन कई बार थोड़ा विराम लेकर फिर से सोचने से वो चीजें आसान हो जाती हैं, और कई बार डिस्कस करने से ऐसी कई चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे उसका रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अपने दोस्तों से, अपने कलीग से जब डिस्कस करता हूं, उसका समाधान बहुत ही छोटा होता है। और उन लोगों से वार्तालाप करने के बाद ऐसा हमें क्लू मिल जाता है कि जिससे हम महीनों अटके थे वो दिनों में उसका समाधान हो जाता है।
क्या कभी ऐसा रहा आशुतोष जी कि कोई बहुत बड़ी, आपने फील्ड की बात कही संक्षेप में, कि कोई बहुत बड़ी सी चीज थी लेकिन सचमुच जैसे आपने कहा डिस्कस आपने कर लिया, या खुद ही कहीं अपने अंदर गए और बहुत ही सहज रूप में उसका समाधान आपको दिख गया हो?
मैं, अगर आप मुझे तीन चार मिनट का समय दें तो मैं एक आपसे छोटी सी कहानी शेयर करूंगा। मेरा अनुभव नहीं है लेकिन मैं अपने फील्ड का अनुभव बताता हूं।
जी,
आप लोगों ने महाराष्ट्र में एक जगह का नाम सुना होगा, गढ़चिरौली, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर कोई भी जाना भी नहीं चाहता है, सरकारी तंत्र तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता है। एक वहां डॉक्टर हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा या नहीं, अभय बांग और रानी बांग, दो लोग ये डॉक्टर हैं, काफी फेमस डॉक्टर हैं। ये लोग जब एमडी करके जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से लौटे थे तो ये लोगों ने गढ़चिरौली को अपना कार्य क्षेत्र चुना, मुंबई पुणे छोड़कर, क्योंकि ये लोग गांधी के सिद्धांत से प्रभावित थे, उनके दर्शन से प्रभावित थे, तो इसलिए जाकर लोकल में काम करना चाहते थे। इन लोगों ने उस समय जो किया, एक ये जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होता है जिसको जिसका एक उन्होंने जीन खोजा और वो काफी रिसर्च पॉपुलर हुआ। लैंसेट नामक एक शोध पत्र जो कि मेडिकल फील्ड में बहुत हाई माना जाता है उसमें वो पब्लिश हुआ। वो लोग वहां के आदिवासियों पर काम करना चाहते थे लेकिन आदिवासी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। बात करने के लिए इसलिए नहीं तैयार थे कि उनका अपना साइंटिफिक प्रॉब्लम था, आदिवासियों की अपनी प्रॉब्लम थी। एक दिन ये लोग रात में गए आदिवासियों के साथ बैठे, क्यों तुम बात नहीं करना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि आप जो करना चाहते हैं मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैं क्यों आपसे बात करूं? मेरी समस्याएं बहुत साधारण हैं, हमारे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, नियोनेटल हेल्थ। उन्होंने उनके दिमाग में ये लगा कि मैं रिसर्च किसके लिए कर रहा हूं, और ये उस इलाके में और बहुत सारे इलाके में जहां रिसोर्सेज की कमी है वहां पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो नवजात बच्चे होते हैं सेप्सिस के चलते, मेनिंजाइटिस के चलते और निमोनिया के चलते उनका मृत्यु दर काफी ज्यादा है। अभय बांग और रानी बांग ने अपने रिसर्च से एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला कि कैसे इंटरवेंशन किया जा सकता है टाइमली। ये जॉइंट प्रॉब्लम था उस इलाके का और उसका सिंपल सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एक टाइमर बनाया और एक डोजेज बनाया जिसमें लोकल जो मिडवाइफ होती हैं, नर्स होती हैं, गांव में दाई होती हैं, उनको ट्रेन किया कि इन बच्चों को समय पर कैसे डोज दिया जा सके, क्योंकि अभय बांग हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, रानी बांग भी नहीं पहुंच सकती थी, या वो लोग बरसात के दिनों में या उस जहां रोड नहीं है वहां से आ नहीं सकते थे। तो उन्होंने आरोग्य दूत नामक का एक संस्था बनाया जो लोग वहां पर सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये एक विशालकाय समस्या का उन्होंने एक छोटा सा सोल्यूशन बनाया और लगकर उसका इम्पैक्ट इतना है, मैं आपको बताऊं कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो पॉलिसी है, जो मेडिकल पॉलिसी है, उसको चेंज किया अभय बांग के रिसर्च से। तो ये बिगर प्रॉब्लम का नैनो सोल्यूशन है अगर लगन हो और करने की इच्छा हो। तो मैं अपना न कहकर अभय बांग का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं और ये कैसे लग कर किया जा सकता है उसका एक जीवंत उदाहरण है और सबके लिए अनुकरणीय है कि सॉल्यूशन वहां होना चाहिए जहां प्रॉब्लम है, ये नहीं कि आप अपने लोकल में लाइट जहां है वहां पर प्रॉब्लम खोजें।
बहुत सुंदर सी बात आपने कही है कि सचमुच यदि लगन है, निष्ठा है, तो बड़ी से बड़ी समस्या यदि सामने वाले तैयार भी ना हो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तो वहां से भी कुछ सुंदर और सरल तरीका निकाला जा सकता है जिसको बड़े बड़े लोग भी स्वीकार करते हैं। सरोज दीदी, आप पिछले 42 वर्षों से समर्पित रूप से ब्रह्म कुमारी केंद्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं और इतनी सारी ब्रांचेस का आप संचालन करती हैं, हजारों लाखों भाई बहनों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो यहाँ किस प्रकार की समस्याएं, वैसे आध्यात्म के जगत में कहा जाता है कि समस्याएं नहीं आती हैं, क्या यहाँ समस्याएं नहीं आती और आती हैं तो आप कैसे उनका समाधान करते हैं?
आपने बहुत अच्छी बात कही कि आध्यात्म क्षेत्र में समस्याएं नहीं आती हैं। मैं ये कहूंगी क्योंकि अगर हमने आध्यात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया है तो हमारा दृष्टिकोण इस लेवल का हो जाता है कि हमें समस्या लगती ही नहीं है। हमें बाबा के एक महावाक्य याद आते हैं कि इनोसेंट अर्थात सेंट, सेंट का मतलब इनोसेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान में हम प्रखर ना हो लेकिन व्यर्थ की बातों से इनोसेंट हो जाएं। जो बात हमारे मतलब की नहीं है उससे हम ज्यादा मन में रजिस्टर ना करें। और यही कारण है कि किसी की भी हम कोई बात पहले तो ध्यान जाता नहीं है, जाता भी है तो हम उसमें उनको मन तक रजिस्टर होने नहीं देते, मन एकदम प्लेन रहता है। इसलिए प्लानिंग भी बहुत अच्छी होती है और कोई बड़ा कार्य आता भी है तो उस प्लानिंग बुद्धि से जब आगे बढ़ते हैं तो वो कार्य ठीक हो जाता है। और दूसरी बात एक और है कि मेरे ऊपर जो विशेष अनुभव रहा है इतने सालों का, स्थापना के कार्य का रोल मेरा ज्यादा रहा है, सेंटर एस्टेब्लिश करना, न जाने कितने स्थानों पर एस्टेब्लिशमेंट का कार्य परमात्मा ने हमें सौंपा, मैं उसमें अपना गौरव महसूस करती रही और बिल्कुल डिटैच्ड होकर सेवा केंद्र स्थापन किया और बड़ों को परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव मान के उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भावनाओं को ऊंचा उठाकर जहां भी गए सफलता ने हमारा साथ दिया। और उस समय मैं, जैसे हम डॉक्टर साहब ने कहा कि कि इन्होंने लोगों से डिस्कस किया। हम कई बार हमारे बड़े हमसे दूर होते थे फिजिकली, हम बातचीत नहीं कर पाते थे, तो हम बाबा के कमरे में मेडिटेशन रूम में जाते थे, बाबा इस बात का ज्ञान मेरे को नहीं है, आप बताएं कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये कार्य आप कैसे कराएंगे। तो हमने देखा कि बहुत नामुमकिन काम जो शायद आम भाषा में कहेंगे नहीं हो सकते थे, वो इतने सरल हो गए कि हमें कभी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। और स्थापना के कार्य में रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, मैन मनी मटेरियल मार्केट मशीनरी सब कुछ चाहिए होता है, पर परमात्मा की याद से जो माइंड इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स, अगर इसको हमने ईश्वर की याद में लगा लिया है तो इतनी विल पावर आती है कि उस विल पावर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाकी रिसोर्सेज भी हमारा साथ देते हैं और सफलता साथ में चलती है। ये मेरे जीवन का अनुभव है।
बहुत सुंदर, आपने तो एक ऐसी गहरी सी बात कही है। आप सब भी यहाँ राजयोग का अभ्यास कर ही रहे हैं, यदि परमात्मा से मन के तार जुड़ जाते हैं तो फिर कोई समस्या लेके हम बैठे भी, यदि कोई छोटी मोटी है तो उसका समाधान उनकी तरफ से हमें प्राप्त हो जाता है। इसका भी सुंदर जरूर अनुभव करके जाएं। एकता बहन जी, खास आप परिवार में भी रहती हैं और साथ ही साथ राजयोग का अभ्यास भी करती हैं, और यहाँ भी हमारे जितने भी रिसर्चर्स आए हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से आप भी जुड़ी हुई हैं, तो ये दोनों के बीच का जो एक समन्वय है वो कैसे स्थापित किया जाए, वो बहुत महत्व रखता है अपने आप में। क्योंकि कई बार जो फील्ड में हमारे पास प्रेशर है उसको लेकर के हम अपने घर में आ जाते हैं, और घर का जो प्रेशर है लेकर के वहां चले जाते हैं, दोनों में ही कैसे इस प्रेशर को समाप्त करके बिल्कुल हल्के फुल्के रहा जाए ताकि हम अपने जीवन का आनंद भी ले सकें और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फेस भी कर सकें।
ओम शांति। जैसे कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो कुछ होती नहीं है, चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस तो आएंगे ही यदि हमें आगे बढ़ना है तो। सो बैलेंस मेंटेन करने के लिए वी हैव 24 आवर्स इन आवर हैंड। मुझे फैमिली का भी रोल मालूम है, मुझे मेरे रिसर्च का रोल भी मालूम है, मेरी अदर एक्टिविटीज का भी रोल मालूम है, मुझे उनकी टाइमलाइंस भी पता है। सो मैं यदि सब कुछ एक साथ ही सोचती रहूंगी कि ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है, सो आई एम क्रिएटिंग माई ओन प्रेशर। बट इफ आई फिक्स माई टाइम लाइन कि आई विल गिव दिस टाइम फॉर माई रिसर्च वर्क, दिस टाइम फॉर द फैमिली, सो इट हेल्प्स टू मेक अ बैलेंस एंड आई ट्राई टू डू द सेम। एंड वेन द प्रेशर कम्स, फर्स्टली आई कनेक्ट टू सुप्रीम पावर गॉड। I come in the silence, means give myself a pause, think about it, and I see at that present time what is my priority. And based on those priority, I divide my work and move on. Thank you.
बहुत सुंदर। कार्य को मैनेज करने से भी हमारी समस्याएं दूर होती चली जाती हैं। भ्राता जी, आपसे पूछना चाहूंगा, कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं एक बैलेंस मेंटेन करने की, लेकिन कार्य इतने ज्यादा होते हैं कि हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, और इससे परिवार वाले कई बार नाराज हो जाते हैं, कई बार कलीग्स हमारे नाराज हो जाते हैं। ये बैलेंस स्थापित करने में क्या राजयोग हमारी मदद करता है, या हम किस प्रकार से अपने कार्यों को व्यवस्थित करें जो हम सभी को संतुष्ट और खुश कर सकें, हम भी अपने जीवन से संतुष्ट और खुश रहें।
राजयोग से एक बड़ा फायदा ये है कि हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, और इसका कारण है क्योंकि मन शांत होने लगता है। भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो भी राजयोग से जुड़ी हुई है, कि जब समस्या आती है अगर हम शांत में बैठकर उसके बारे में विचार करते हैं तो हल मिल जाता है। राजयोग से क्योंकि मन बुद्धि का प्योरिफिकेशन हो जाता है, समाधान हमारे अंदर ही होता है, तो हमें उसका हल मिल जाता है। वो हमारे अंदर है, क्योंकि हमारा अपना मन बहुत विचलित हो जाता है तो अपने पास का समाधान हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार मेरे जैसे लोग जो चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगा होता है और चश्मा ढूंढते भी रहते हैं। देखा होगा आप में से जो चश्मा लगाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है मोबाइल से फोन बात करते रहते हैं और अपना ही मोबाइल ढूंढते भी रहते हैं। मन जब बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, इधर उधर इधर उधर, तो हमारी एकाग्रता नष्ट हो जाती है और इस तरह के भाव पैदा हो जाते हैं। तो जब हम राजयोग करते हैं, हमारी बुद्धि की क्षमता और कार्य करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, और उतने ही समय में, जितने समय में पहले हम थोड़ा परेशान भी होते थे, चार काम करने हैं, थोड़ा सा समय है, कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन जब माइंड पीसफुल होता है तो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर परफेक्टली काम करती है और हम सहज ही डिसाइड कर लेते हैं, पहले ये काम, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और विदाउट बीइंग टेंस हम सहज भाव से सभी कार्य कर लेते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं हमारे वहां का। एक दो दिन पहले हमारे किचन में, मैं किचन से जुड़ा हूं, आप सबको गलत परिचय हो गया था, लोगों ने दाल जला दी। अब खाने वाले बहुत, अब जली हुई दाल में तो बदबू आती है और वो अच्छा भी नहीं लगेगा, इतनी बड़ी संख्या होती है, तो मैंने देखा दाल तो जल गई है। अब यहाँ ये है कि हम विचलित हो जाएं, हम परेशान हो जाएं, हम एक आपस में क्लैश जैसा पैदा कर दें, क्यों नहीं ध्यान दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन हमने शांत मन से ऐसे उपाय किए कि दाल बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन गई। ये हर एक फील्ड में ऐसे अनुभव किए जा सकते हैं। तो राजयोग हमें पीसफुल करता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज, और पीसफुल होने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, धैर्य चित्त हम हो जाते हैं, और तब थोड़े ही समय में अनेक कार्यों को हम मैनेज भी कर पाते हैं। ये तो चीज होती है कि जो गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ की जिम्मेदारी, जॉब की जिम्मेदारी, अपने भी कुछ कार्य होते हैं, लेकिन अगर हम एक्टिव हैं और अगर हम बहुत एफिशिएंट हैं तो हम उतने ही समय में डबल काम कर लेते हैं। ये मेरा अनुभव है, मैं खुद भी बहुत सारे काम कर लेता हूँ सारे दिन में, और देखने वाले मुझे भी कहते हैं, मुझे दो चार दिन में सुनना ही पड़ता है कि आप इतने सारे काम कैसे मैनेज कर लेते हो, पर मैं उनको मैनेज करते हुए और कार्य करते हुए हर कार्य को बहुत एंजॉय करता हूँ, और इसका एक ही कारण है, इजी गोइंग नेचर जो राजयोग से हमें प्राप्त हो जाती है। हम इजी होते हैं तो हमारे कार्य भी इजी हो जाते हैं।
बहुत सुंदर टिप्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, आप लोग तालियां नहीं बजा रहे जब हमें कुछ अच्छी चीज प्राप्त होती है तो खुशी और उमंग में जरूर हाथ से तालियों के द्वारा हम उसका प्रदर्शन भी अवश्य करें, क्योंकि सचमुच जीवन के लिए कितनी खूबसूरत सी बातें हमें प्राप्त हो रही हैं। और मुझे लगता है कि ये बातें यदि जीवन में आ जाएं तो सचमुच हमारी जो जाइंट प्रॉब्लम्स हैं वो सचमुच नैनो होती चलेंगी। और आपको भी अवसर प्राप्त होगा, आप अपने प्रश्न निकाल करके जरूर रखिएगा, हमारे पैनलिस्ट यहां बैठे हुए हैं। लास्ट में आपके मन में भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है, कोई बहुत बड़ी समस्या आपको लगती है जिसका सामना आप कर रहे हैं, या आप जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो बात यदि अभी नहीं आ पाई है तो आप जरूर उस प्रश्न को हमारे पैनलिस्ट के सामने रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे प्रश्न ये है, मंगल मिशन हमारा सफल हुआ, हम बहुत आनंदित हुए, चंद्रयान दो की जब बात आई काफी हद तक सफल रहे, लेकिन जो थोड़ी सफलता नहीं मिल पाई उसके लिए निराशा लगी। ज्यादातर हमारे जीवन में ये होता है कि हम कोई बड़ा ध्येय लेकर के चलते हैं, लेकिन हमेशा ये संभव नहीं होता कि संपूर्ण सफलता मिले। ऐसे में मन में जो निराशा के भाव आ जाते हैं, मन में जो असफलता के बाद जो एक काली परछाई पड़ जाती है, उस समस्या को कैसे दूर किया जाए ताकि हम जीवन में सतत आगे बढ़ें, आपके अनुभव से जानना चाहेंगे।
आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया, क्योंकि चंद्रयान टू अभी हॉट टॉपिक है और सारे लोग पहली बार हमें लगता है विज्ञान के लिए जगे थे। रात को जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की धरती को छूने के लिए आगे बढ़ रहा था, अन्यथा लोग मूवी के लिए जगते हैं, इवन बिग बॉस के लिए जगते हैं, विज्ञान के लिए पहली बार जगते हुए राष्ट्र को देखा गया। तो यह सच बात है कि मंगल मिशन 100% सफल रहा और चंद्रयान में थोड़ी सी कमी रह गई। अगर विक्रम लैंडर सही में धीरे धीरे जाकर लैंड करता और प्रज्ञान रोवर जो कि चंद्रमा की सतह पर टहलने वाला था, टहलकर वहां की सतह की जो भी खूबियां हैं, पानी है या नहीं, क्या उसका मटेरियल है, सबका अगर हमें भेजता तो 100% सफल होता। अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, विक्रम लैंडर को खड़ा होने की कोशिश हो रही है, देखते हैं कहां तक सफल होता है। हां, निराशा होती है, अंत समय में जाकर थोड़ा सा चूक गया तो निराशा होती है, लेकिन ये देखना चाहिए कि कितना सफल हुआ। वैज्ञानिकों को ही नहीं, पूरे राष्ट्र को देखना चाहिए कि 95% चंद्रयान 2 सफल रहा। वैज्ञानिक लोग दिन रात,
हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बार जोरदार तालियां तो जरूर बजाएं। 95% हम सफल रहे हैं, उनकी जो दिन रात की मेहनत है उसको हम सब सलाम करते हैं।
वो दिन रात लग के किए थे, तो 5% जो अभी तक नहीं हो पाया है, एक्चुअली मैं विश्वास करता हूं कि चंद्रयान 3 कुछ दिनों में जाने वाला है, क्योंकि कलाम जो कि बहुत बड़े फिलोसफर थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि विज्ञान में जितना सक्सेस आता है उतना ही अनसक्सेस आता है, क्योंकि ये टॉस के दो क्वाइन की तरह होते हैं, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, एक तरफ सक्सेस एक तरफ फेल्योर। तो आपको फेल्योर के लिए उतना ही रेडी रहना चाहिए और वैज्ञानिक उतने ही रेडी रहते हैं कि मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं हो सकता है कि असफल रहे। जैसे आप लोग ईश्वर में बिलीव करके प्राणायाम करते हैं या राजयोग करते हैं, वैज्ञानिक लोग उसी बिलीफ के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैं अगर सही रहा तो यहां पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाए, वो फिर उसको मुझे लगता है कि सुधार कर। और चंद्रयान 3 में आप अगले एक साल के अंदर सुनेंगे कि 100% भारत सफल रहेगा।
चलिए, आपके मुख में गुलाब जामुन, हमारे सभी वैज्ञानिकों के मुख में गुलाब जामुन और यहाँ बैठे आप सभी लोगों के, पूरे देशवासियों के भी मुख में गुलाब जामुन, ऐसी सुंदर सी बात आपने कही है। दीदी, एक बात जो मैंने डॉक्टर साहब से कही थी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, अध्यात्म कैसे हमें मदद करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सी बात रहती है जब समस्याएं आती हैं हम बहुत ही डगमगा से जाते हैं, एक हलचल में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और सपने तो बहुत बड़े होने ही चाहिए, लेकिन जब वो सपने साकार होने में थोड़ी कमी रह जाती है हम हिल से जाते हैं, ऐसे में अध्यात्म हमें कैसे मदद करता है, आप क्या करती हैं, अपने अनुभव से जानना चाहेंगे।
ओम शांति। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें पॉज देना चाहिए और थोड़ा उस परिस्थिति से हटके हम सोचें, मेडिटेशन राजयोग भी, राजयोग मेडिटेशन यही सिखाता है कि हम डीप साइलेंस में जाएं और रियलाइजेशन कि कहां मेरी कमी रह गई, सेल्फ को देखें, कि रियलाइजेशन के बाद आता है चेकिंग एंड चेंज। जब मैंने रियलाइज किया उसके बाद चेक एंड चेंज। अगर आपको ये कोई पूछे कि आप चेक लेना पसंद करेंगे या चेंज लेना पसंद करेंगे तो आप क्या जवाब देंगे, चेक या चेंज? बताएं, चेंज ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो उसकी गारंटी है। चेक तो जाली भी हो सकता है, बाउंस भी हो सकता है, इसलिए कई बार हम केवल चेक करके वहीं छोड़ देते हैं पर परिवर्तन नहीं लाते। राजयोग हमें डीप रियलाइजेशन के साथ परिवर्तन करने की क्षमता प्रदान करता है। तो जहां पर मेरे में कोई एरर है, सबसे बड़ी बात तो ये हमें रियलाइजेशन देता है कि हम सेल्फ को चेक करें, सेल्फ को करेक्ट करें, दूसरे को नहीं। क्योंकि अभी तक क्या होता है कि हमारी पॉइंटिंग फिंगर दूसरों पर ज्यादा जाती है। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि दो प्रकार के ग्लासेस हैं, एक है ट्रांसपेरेंस ग्लास और एक है लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास में व्यक्ति स्वयं को देख सकता है, दूसरे को नहीं। ट्रांसपेरेंट में दूसरे दिखाई देते हैं, स्वयं को नहीं देख सकते। तो अच्छा ये रहेगा कि हम किसको देखें, स्वयं को देखें। तो जब हम अपने पर फोकस्ड अटेंशन रखते हैं, अपनी चेकिंग और चेंज में समय देते हैं, डीप रियलाइजेशन के साथ उसको परिवर्तन करते हैं तो वो चिरकालीन परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। चाहे हम कोई भी छोटी छोटी बातें आ जाएं, मैं तो ये बड़ी समस्याएं नहीं कहूंगी, बहुत छोटी बातें जिनको हमने बड़ा कह दिया है वो ऐसे पार हो जाती हैं जैसे मक्खन से बाल। तो राजयोग हमें इसमें हेल्प करता है क्योंकि इससे बहुत सारी विजुअलाइजेशन पावर, इंट्यूटिव पावर, डिस्क्रिमिनेशन पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस सब बढ़ जाता है। ये गुण जो हैं हमें बहुत मदद करते हैं किसी बात से उभरने के लिए।
राजयोग हमें समाधान की ओर ले चलता है और समाधान स्वरूप आत्माएं हमारे सामने बैठी हैं। एकता बहन जी भी पिछले 22 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। तो एकता बहन, आपसे ये जानना चाहेंगे आपके अनुभव के आधार पे कि जब जीवन में ये जो बातें रहती हैं, कई बार हम इरिटेट हो जाते हैं जब बातें आती हैं और साथ ही साथ यदि सामने वाला व्यक्ति हमें अपमानित कर रहा है उस समय भी लाजमी है मन में कोई ना कोई बात आएगी, असफलता की बात हमारी हुई ही हुई। कई चीजें हमें इरिटेट करती हैं, परेशान करती हैं या फिर जब ये समस्याएं या बातें हमारे सामने आती हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल ही जैसे हीन महसूस करने लगते हैं, नीचे महसूस करने लगते हैं, लो महसूस करने लगते हैं। जब आप योग करती हैं किस प्रकार ये आपको ऊपर उठाता है या कौन सी ऐसी बातें हैं अध्यात्म में जो आपको अपनी उस मानसिक स्थिति में बने रहने में मदद करते हैं?
राजयोग में सबसे पहले हमें स्वयं का परिचय दिया जाता है कि एक्चुअली मैं कौन हूं और मेरी क्वालिटीज क्या हैं। हमें हमारे बहुत सुंदर स्वरूप का, जो सातों गुणों और शक्तियों से भरा हुआ है, उन गुणों का रियलाइजेशन कराया जाता है। सो जैसे आज हम देखते हैं साइंस भी मैक्रो से माइक्रो होती जा रही है और जितनी माइक्रो हो रही है उतनी पावरफुल हो रही है। सो राजयोग के अभ्यास द्वारा हम भी फिजिकल से मेटाफिजिकल यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं और सूक्ष्म है हमारी आत्मा जो कि सभी एनर्जी से भरपूर है। और जैसे ही हम अपनी इस सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं ये सारी बातें हमारे लिए बहुत छोटी हो जाती हैं। और जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि हमें इतनी शक्ति देती है, आज जैसे दुनिया में जिसके पास जो पावर है वो अपने आप को उसकी अथॉरिटी समझता है। किसी के पास मनी की पावर है तो सोचता है मेरा इस देश पे काम हो जाएगा, किसी के पास डिजिग्नेशन पावर है। तो जब मैं आत्मा अपने इन गुणों को देखती हूँ कि मेरे पास तो ईश्वर की दी हुई इतनी सारी बातें हैं, तो ये अपने आप में मेरे लिए एक पावर बन जाती है और सभी समस्याओं से ऊपर उठने का कार्य करती है। दूसरा, मेरा साथी कौन है? राजयोग के द्वारा हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो कोई अपमानित कर रहा है तो वो एक्चुअली मेरा अपमान नहीं कर रहा है, वो क्या सिद्ध कर रहा है कि उसका अपना स्टेटस क्या है। सो और आत्मिक उससे हमको वो अपमान की फिर फीलिंग नहीं आती है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, क्योंकि ये चैलेंजेस तो आएंगे। और राजयोग में हमें ये बताया गया कि हर व्यक्ति का अपना संस्कार, अपना रोल है, उसके अनुसार वो अपना कर्म कर रहा है। तो हमें उसके कर्म को नहीं देखना, हमें अपने कर्म पर फोकस रहना है और उस पर आगे बढ़ना है।
शुक्रिया। स्वयं को देखें, जैसे दीदी भी कह रही थी, तो सहज रूप से हम बातों को पार कर सकते हैं। डॉक्टर आशुतोष जी, एक बात हमारे जीवन में आती है जब हम फील्ड में रहते हैं, तो जब हम बहुत अच्छी कमाई करने लगते हैं या बहुत आगे बढ़ने लगते हैं तो कुछ लोग हमसे ईर्ष्या भी करने लगते हैं, उनमें जलन का भाव पैदा होता है, वो हमारी लेग पुलिंग, पैर खींचने की कोशिश करते हैं, हमारे रास्ते में अवरोध डालने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी चैलेंज या बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। तो ऐसे में हमें लगता है कि अब क्या किया जाए। मन में कई बार भविष्य की जो चीज है, अनिश्चित भविष्य है, उसके लिए भी लेकर के भय पैदा हो जाता है। तो ये जो एक हमारी साथ ही जलन का भाव रख के हमारे लिए अवरोध पैदा करते हैं, और भविष्य में कुछ अनिश्चित जो चीज है उसमें कुछ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरी इच्छा अनुसार कार्य ना हो, ये दोनों बातें जीवन में आती हैं बड़ी समस्या के तौर पे। इन चीजों को कैसे फेस किया जाए?
सबसे सबसे जो मुख्य समस्या है आपके अंदर भय। अगर आप निर्भीक हैं तो आपके आपसे कोई शत्रुता रखे या भविष्य में कोई समस्या आए उसका कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप भयभीत होते हैं कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, उसको सोचने की कोई जरूरत नहीं। वर्तमान कैसा चल रहा है उसका आनंद उठाइए। अगर वर्तमान के हर पल का हम आनंद उठाते चलें तो भविष्य खुद ब खुद सुंदर हो जाएगा। जहां तक बात है, लोग ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या करने वाले निगेटिव एनर्जी है जैसा आप लोग सिखा रहे हैं, और आपके पास अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी, एक तरफ निगेटिव एनर्जी। हाँ, आपका एनर्जी कुछ कम हो सकता है, लेकिन अगर ये एनर्जी आपके पास अगर क्वांटम ज्यादा है पॉजिटिव एनर्जी की, तो फिर भी आपका पॉजिटिव एनर्जी का क्वांटम ज्यादा रहने वाला है और आप आराम से इन बाधाओं से बिना प्रभावित हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब ये पॉजिटिव एनर्जी का भाग क्वोशेंट कैसे बढ़ाया जाए, आप लोग मेरे से बेहतर सिखाते हैं। राजयोग के माध्यम से अपने एनर्जी को कैसे संचित किया जाए और उसको उसका लाइक भाग कैसे ऊपर किया जाए, वो एक तरीका आप लोग बताते हैं, और कई और तरीके हो सकते हैं जिससे अपने मन को एकाग्रचित करें, अपने आप को शुद्ध रखें। अगर ये सब हम करेंगे तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी मैनिफोल्ड ज्यादा होती है, और अगर थोड़ी बहुत किसी की निगेटिव एनर्जी भी हो तो आप निश्चिंत रूप से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने बुद्ध का उदाहरण सुना होगा। बुद्ध एक बार, बुद्ध माने ज्ञान से जो प्रबुद्ध है, वो एक बार जा रहे थे वहां के उस जमाने के पंडित जो थे, जो वैदिक जो ब्राह्मण जो थे, वो लोग उनसे जलते थे, इनके तेज से, इनके ज्ञान से जलते थे। तो उन लोगों ने बुद्ध के रास्ते में कांटे बिछा दिए, फिर भी बुद्ध बिना प्रभावित हुए कांटे पर जाने लगे। तो क्या हुआ कि वहां पर जो कुछ शूद्र थे उस जमाने में, वो देख रहे थे कि ये तेजस्वी पुरुष आगे बढ़ता जा रहा है, कंटकीर्ण मार्ग है, उसके बावजूद भी वो लोग आए और सारा कांटा साफ किए और उनके पैर से वो कांटे निकाले। वो लोग एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु बने बाद में बौद्ध संघ में। तो बुद्ध के पास इतना पॉजिटिव एनर्जी था कि वो थोड़े बहुत निगेटिव एनर्जी को भी वो पार कर गए और उसको वो एम्पलीफाई कर लिए, क्योंकि उनके पास उनके इस कार्य को देखकर बहुत लोग प्रभावित हुए और उनके संघ से जुड़ते चले गए। और एक जमाने में बुद्धिज्म आज दुनिया में हर जगह फैला हुआ है, स्पेशली ईस्टर्न एशिया में। तो बुद्धिज्म कितना फैल गया इस पॉजिटिव थिंकिंग के चलते, इस आत्मदीपो भाव के चलते।
एक चीज ये कि चलिए पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ाई जाए, लेकिन कई बार हम ये भी, जैसे आपने बुद्ध जी का एग्जाम्पल दिया, वो इतने बड़े संत या महात्मा थे, हमारे मन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम तो संसार में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, सामान्य हैं, हमारे पास तो इतनी ऊर्जा नहीं है, तो ऐसे में हमारे मन में वो जो राग द्वेष वाली बात है वो तो आ ही जाती
है। नहीं, अब मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूँ। संत रविदास का नाम आपने सुना होगा। संत रविदास जूता बनाते थे, उनके पास भी बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव आए कि आप राजकवि हो जाइए, इतना अच्छा लिखते हैं, आप राजकवि हो जाइए। उन्होंने बोला कि मैं राजकवि बनकर क्या करूंगा, मैं इसमें संतुष्ट हूं, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा है। और तुलसीदास, कबीरदास ऐसे महान पुरुष जो एक जमाने में गृहस्थ समाज में रहते थे, उनके पास पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो बिना किसी प्रभावित हुए हुए, बिना किसी राज पद की कामना किए हुए जो थे वो करते रहे और अपने एनर्जी को आगे बढ़ाते गए। जहां तक हम लोगों की बात है, अपने मन को एकाग्रचित करके, इन सारी चीजों को इग्नोर करके, इन पर अगर ध्यान देंगे तो आपका ध्यान भटकेगा। आती हैं समस्याएं, उनको ठीक है, उनको देखिए, दृष्टा होइए, लेकिन अपना राह सीधा रखिए, और अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो समस्याओं का कोई प्रभाव आप पर पड़ने वाला नहीं है।
जी जी, जहाँ चाह वहाँ राह, बहुत सुंदर सी बात। और आपने दोनों बहुत ही सुंदर से एग्जाम्पल दिए हैं जिसके माध्यम से सचमुच अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते जाएं। और लोग तो वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, हा? लोगों का काम है कहना। यदि हमने अपना ध्येय निर्धारित किया है तो निश्चिंत होकर के आगे बढ़ते चलें, लोगों की बातों का असर हम पे नहीं पड़ेगा। दादा जी, सारी रिसर्चर्स हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं और इनके जीवन में कई बातें आती होंगी। आप इन्हें देख करके कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या अपने पूरे जीवन के निचोड़ से इन्हें देना चाहेंगे, पश्चात मैं इनकी ओर आना चाहूंगा, इनके क्वेश्चन लेना चाहूंगा। कुछ ऐसे निचोड़ जो सचमुच इन्हें सफलता के शिखर की ओर ले जाएं। एक तो समस्याएं आए ही ना, और यदि आ भी जाएं तो ये बिल्कुल अडिग होकर के डटे रहें और सफलतापूर्वक उसे पार कर लें।
भाई साहब की एक बात कोई पहले मैं कंटिन्यू करता हूं जो आप पूछ रहे थे। ईर्ष्या होती है पर हम बढ़ते चलें। एक छोटा सा स्लोगन मैं आप सबके लिए रख देता हूं, ईर्ष्या करने वालों का काम है ईर्ष्या करना, और हमारा काम हो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलना। उन्हें हम देखें ही नहीं, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, इसको अंडरलाइन कर दें, उन्हें देखेंगे तो हम भी उनकी तरफ आ जाएंगे, उन जैसे बन जाएंगे। राग द्वेष ईर्ष्या नफरत घृणा ये समाज के कुछ ऐसे अंग बन चुके हैं जिन्हें अभी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं हमेशा एक बात सोचता आया हूं और वही आपको कहता हूं, जो महान बने हैं, आप वर्तमान के महात्मा गांधी का उदाहरण ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद को भी 125 साल ही हुए हैं उनका उदाहरण ले लीजिए, और बहुत सारे महान पुरुष हमारे समक्ष अब भी हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम का ले लीजिए, जिनको आगे बढ़ना है उन्हें ये बातें सुनने के लिए तैयार होना ही चाहिए। जो महान कार्य करते हैं उन्हें सुनना अवश्य पड़ता है, इसलिए उससे बिना प्रभावित हुए एक बुद्धिमान मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बहुत अच्छी आत्मिक दृष्टि और विल पावर से आगे बढ़ते रहना चाहिए। बातें आएंगी लेकिन चली जाएंगी। देखिए, जो आया है सो जाएगा। आपके जीवन में कुछ भी आता है वो जाने वाला है, उसको आप रोके नहीं। और रोकने का अर्थ होता है जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब हम उसके बारे में बहुत चिंतन करते हैं तो हम उसको रोक देते हैं। आप उसे रोके नहीं, वो तो जा ही रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म में हम सभी के पास एक सुंदर दृष्टिकोण आ गया है कि ये संसार एक विशाल नाटक है, ये विश्व ड्रामा है, और ड्रामा हमेशा चलता रहता है, उसकी रील चलती रहती है। ये चल रहा है, हम इसे चलते हुए देखें, हम इसमें तेज तेजी से दौड़ लगाएं तो आगे बढ़ जाएंगे, चैलेंजेज आएंगे, समस्याएं आएंगी। कोई भी मनुष्य इनको पार करके ही शक्तिशाली बनता है। जिसका मार्ग सीधा सीधा है वो शक्तिशाली नहीं बनता, जो गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, ठोकरे खाता है, कुछ फेस करता है, उसके जीवन के अनुभव उसे एक दिन अवश्य महान बना देते हैं। इसलिए अपने साथ एक चीज अवश्य जोड़ लेना, हम भगवान की संतान हैं, देयरफॉर वी आर वेरी पावरफुल। ये बात सभी को याद रखनी है। और वो हमारा परम पिता है तो वो हमें साथ भी देता है। इन दो चीजों को यदि आप जीवन में रखेंगे और जब भी कठिनाई आए यदि आप उससे बाहर न निकल सकें, तो जो भगवान हमारा परम पिता हमारे साथ है, जो हमें साथ देता है, ये याद रखना, वो मेरे साथ है, तो समस्याओं को पार करना इजी हो जाएगा। मैं बहुत सारे वैज्ञानिकों से मिलता हूं, सबकी समस्याएं लगभग वही होती हैं जो आजकल समाज में फैली हुई हैं। मैं आप सबको कहूंगा किसी भी कारण से अपने मन को कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि इस समय संसार में एक हवा चल गई है, उस हवा से मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं। उस हवा के बारे में WHO ने भी सचेत किया है संसार को। पिछले साल अगस्त में उन्होंने कहा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने कि 2020 से इस संसार में डिप्रेशन महामारी हो जाएगी। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, अवेयर करना चाहता हूं, ज्यादा सोचने की आदत ना हो। इस आदत को अगर ये आने भी लगे तो बढ़ने नहीं देना है, तो आपकी मन और बुद्धि की एकाग्रता रहेगी बहुत अच्छी और आप अपने रिसर्च वर्क में बहुत सफलतापूर्वक काम कर सकेंगे। और भाई साहब की बात भी प्रेरणा के रूप में आप सबके समक्ष मैं रिपीट कर देता हूं, जैसे हम जीत को स्वीकार करते हैं, जैसे हम सफलताओं को स्वीकार करते हैं, हमें हार और असफलता को भी स्वीकार करके पुनः दुगने उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्रता जी। मैं अनुरोध करूंगा कि माइक सामने जरूर दीजिएगा ताकि हमारे जो भाई बहने हैं वो भी अपने प्रश्न रख सके हमारे पैनलिस्ट से। और जब तक माइक आए और आप लोग सामने आए, जिन्हें भी प्रश्न पूछना है वो सामने जरूर आ जाए। तब तक दीदी आपसे एक प्रश्न है। कहते हैं कि जब कठिनाई व्यक्ति के पास आती है, समस्या आती है, तो वो बहुत उदास या निराश हो जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है, किसी साधारण एक्टर को नहीं दिया जाता। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
आपने बिल्कुल ठीक कहा रुपेश भाई जी, क्योंकि जब आप हायर स्टडीज के लिए आगे बढ़ते हैं तभी आपको एग्जाम भी उस लेवल के देने पड़ेंगे। अगर आपका लक्ष्य ही छोटा है तो एग्जाम भी उसी लेवल का आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ महान बने, आपने जिस दिन से एडमिशन लिया आप ये तैयार होकर आए कि मुझे उस लेवल का पेपर फेस करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे पहले से अपने को एंटिसिपेट करना है, तैयार करना है, और हो सकता है कि मुझे उसके लिए स्पेशल काउंसलिंग लेनी पड़े, स्पेशल ट्यूशन लेनी पड़े, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तैयारी, पूर्व तैयारी कर लेना बहुत जरूरी है। परंतु मन से कभी हारना नहीं चाहिए कि मेरे ही सामने क्यों आती है। इसलिए आती है कि हायर स्टडीज में मैं जाना चाहता हूं, हर व्यक्ति नहीं जाना चाहता, गिने चुने लोग ही जाना चाहते हैं। इसलिए जो चीज मेरे सामने आई, आई एम यूनिक एक्टर, मेरे जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं। इसलिए जो भी यूनिक बातें आती हैं वो हमें यूनिक बनाने के लिए आती है। ओम शांति।
बहुत सुंदर सी बात दीदी। हर एक आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, यदि बड़ी से बड़ी यदि एग्जाम आपके सामने है तो सचमुच आप बड़े से बड़ा पद या बड़ी से बड़ी प्राप्ति भी करने जा रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल उदास या निराश ना हो जी। अब मैं प्रश्न आमंत्रित करूंगा जी।
ओम शांति।
आप जिनसे प्रश्न करना चाहते हैं आप पूरे पैनल से जी जी, फिर भी आप यदि चाहें कि भाई साहब बात आंसर दें, दीदी दें, डॉक्टर साहब जैसे भी
क्वेश्चन है
जी।
जी हाँ, मैं शिव कुमार हूँ, उत्तराखंड से रुद्रपुर से हूँ, 67 ईयर रनिंग में हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि मैंने स्ट्रगल्स को खूब एंजॉय किया है। आई एंजॉय माई स्ट्रगल्स एंड 45 साल से योग करता हूँ, 3-4 घंटे करता था, अभी भी 2-2.5 घंटे करता हूँ। योग से बहुत सारी समस्याएं और सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, उसके बड़ी लकीर खींच दीजिए और आप अपना लेवल उठा लीजिए, चाहे योग से या स्पिरिचुअल से या मैनेजमेंट से। उसमें बहुत सारी कई दफा ऐसी समस्याएं आती हैं। अभी 3-4 साल से मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूं और मेडिटेशन से वही जितने भी 4 दिन से मैं सारे कॉन्फ्रेंस के कन्वर्सेशन में सभी लोगों ने बहुत सारी सही बातें बताई हैं कि आपकी सोच, मन और बुद्धि की क्षमताएं बहुत बढ़ जाती हैं और हर समस्या का समाधान, क्योंकि आप परमपिता परमात्मा से जब अपने आप का उसके बच्चे मान लेते हैं और उसको पिता मान लेते हैं और उससे संपर्क जोड़ लेते हैं तो अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी आपको हर समस्या का समाधान। ऐसी कोई अभी तक एग्जाम्पल नहीं है कि किसी ने उस परम ब्रह्मांड में अपने परमपिता को माना है श्रद्धा से माना है, उससे समस्या बताने की भी जरूरत नहीं है, पूछ रहे वो देगा। बट कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो काफी चार दिन से सभी लोगों ने कहा कि बिजनेस के अंदर छोटी छोटी दो तीन प्रॉब्लम्स हैं कि बिजनेस में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स से हैं कि कुछ लोगों को इंटरव्यू करते हैं, 6-7 लेवल का इंटरव्यू करते हैं और काफी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, साइकोलॉजिकल भी टेस्ट होता है, काफी हायर लेवल पर टेस्ट करते हैं। वो कहता है मैं 3 महीने में ऐसा काम करूंगा, ऐसा करूंगा, और वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल में वो प्रूव नहीं कर पाता है। बहुत सपोर्ट की जाती है। आज मैं 1700 लोगों के साथ अपनी संस्था में काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग विद देम। तो उस लेवल पे क्या करना चाहिए, 1 साल 2 साल बाद भी फिर उसको हटाया जाता है और वो किसी भी तरह की योग और मेडिटेशन को भी सीखने को तैयार नहीं है। कि जिसको एडवाइज किया था उसके हित में भी उसको कहा जाता है कि आपको जो अपने तजुर्बे उसको शेयरिंग। यही हाल फैमिली में है कि अगर क्या माइंड सेट और ईगो का समाधान दिन में और कल कई दिन भी कहा लोगों ने, हाँ यस आप अपनी टास्क है, आप तो सक्सेस हो ही जाएंगे अपने लेवल को उठा के, पर वो लोग कैसे ठीक होंगे विदाउट योगा और मेडिटेशन के, एंड हाउ कैन दिस इज। थैंक यू।
जी जी बिल्कुल। डॉक्टर आशुतोष जी आपका जो उत्तर है वो देंगे प्रश्न का।
सर आप उम्र और अनुभव में मेरे से दोनों से बड़े हैं, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। सबसे पहले आप लोगों को अपने अनुसार बनाने को मत सोचिए, उनको उनके अनुसार उनकी क्षमताओं को निखारने की सोचिए। मैं आप रामायण पढ़े होंगे, कई बार पढ़े होंगे, सबसे इसके बड़े उदाहरण श्रीराम हैं। श्रीराम ने युद्ध जीता, लंका का युद्ध जीता सबसे ज्यादा अनस्किलफुल लोगों को लेकर, बंदर भालू को लिया, उनको ऑर्गेनाइज किया, उनको मोटिवेट किया, और रावण जिसके पास पुष्पक विमान थे, सब कुछ एजुकेटेड वारफेयर, हाईली ऑर्गेनाइज्ड वारफेयर था, उसके अगेंस्ट सबसे अनस्किल्ड लोगों को लेकर ऑर्गेनाइज करके मोटिवेट करके समुद्र पर बांध भी बांधा और लंका को जीता भी। तो अगर आप लोगों को इस कदर मोटिवेट कर पाए कि उनको अपनी इम्पोर्टेंस पता चलने लगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप मैनेजमेंट में सक्सेसफुल कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का ये छोटा सा उदाहरण बस मैं आपको देना चाहता हूं, बाकी जस्ट लोग हैं ही देने के लिए।
शुक्रिया जी दी। अपने प्रश्न जो भी इनके प्रश्न है प्लीज सामने आ जाए, यहाँ माइक है, माइक पे आकर के अपने प्रश्न आप रखें। और
रामायण सबसे बड़ा उदाहरण है ह्यूमन रिसोर्स का। इवन आप कर्मयोगी कृष्ण को देखिए, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स का एक्सपोजिशन उन्होंने किया था। 5 भटके हुए पांडवों को जिनके पास कोई शक्ति नहीं थी, उनको कुरुक्षेत्र में विजय दिलाई, जो कि एक तरफ द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, कृपाचार्य जैसे योद्धाओं के खिलाफ, और उसमें से भी अगर आप देखें अर्जुन युद्ध से पहले भटके हुए थे, किसको मारे किसको नहीं मारे कंफ्यूज थे, उस समय गीता का ज्ञान देकर उनको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया। तो कहने का मतलब उन्होंने इस तरह मोटिवेट किया, और जितने एचआर मैनेजर हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे अपने इम्प्लॉय को उस स्तर तक उठाएं कि उनको लगे कि ये काम मुझे काम नहीं दिया गया, ये काम मेरा ही है, मैं इसका भाग हूं, उसको आत्मसात करें उस काम को, तो उसका ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो जाएगा।
धन्यवाद। मतलब हम मोटिवेट करें, अच्छे लीडर बने।
ऐसा है आशुतोष कुमार बाबू से, यही ये तो स्पिरिचुअल जो मंच है सजा हुआ है, बहुत आप इसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं। एक तरफ विज्ञान और एक तरफ अध्यात्म, दोनों दो चीज है। अगर विक्रम 2 सफल नहीं हुआ तो आध्यात्मिक सॉल्यूशन इसका क्या होगा, अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। थैंक्स।
सर विज्ञान और अध्यात्म दो चीज नहीं है, दोनों एक ही हैं। दोनों में बिलीफ चाहिए, विश्वास चाहिए। अध्यात्म में आप विश्वास रखते हैं कि शायद मेरे मेडिटेशन से, राजयोग से, कर्मयोग से आप ईश्वर को पा लेंगे, उसी तरह विज्ञान में भी आपको विश्वास रखना होगा। हाँ, जैसे मैं एक स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट हूं, मेरा काम है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखना और उसके डायनेमिक्स को, कम्युनिकेशन को देखना। ये अगर मैं 100-150 साल पहले देखने की कोशिश करता कि कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके एटम्स कैसे मूव करते हैं, शायद मैं नहीं देख पाता, क्योंकि उस समय मेरे पास उस तरह की मशीनें नहीं थी, उस तरह के देखने की क्षमता नहीं थी कि मैं उस एटम को देख पाऊं कि प्रोटीन में कैसे मूव करता है। समय के साथ वो चीजें बढ़ती गई, अब मैं बता सकता हूं कि सॉल्यूशन में ये प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ कैसे बाइंड करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, होता है। उसी तरह अध्यात्म में भी आप, अगर मैं चाहूं कि ईश्वर को देख लूं या ईश्वर को की अनुभूति कर लूं, संभव नहीं है, उसके लिए मुझे अपने स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों दो चीज नहीं है, मैं एक्सपेरिमेंट भी करता हूं, या कोई भी साइंटिस्ट करता है, बिलीफ के साथ करता है, हाइपोथेसिस के साथ करता है कि अगर मैं ऐसा किया तो ये रिजल्ट होगा। और अध्यात्म भी ऐसा ही करता है कि अगर मैं इस रास्ते पर चला तो अनुभूति कर सकता हूं। तो दोनों एक ही पहलू है, पहले प्रश्न का ये उत्तर था। दूसरा उत्तर कि अभी अगर विक्रम लैंडर असफल हुआ तो क्या करेंगे, अध्यात्म इसमें क्या हेल्प कर सकता है। अगर असफल हुआ तो वैज्ञानिक थोड़े समय के लिए दुखी होंगे, जो कि हुए थे, लेकिन आपने देखा होगा कि अगले 24 घंटे के अंदर वो रात रात भर बैठकर जो ऑर्बिटर है, मून ऑर्बिटर, उसकी गति को देख रहे हैं कि कब विक्रम लैंडर के ऊपर से गुजरे कि मैं उसकी स्थिति का पता लगा लूं। तो ये एक तरह से उनकी एकाग्रता है, ईश्वर में नहीं, विज्ञान में एकाग्रता है, जो उनको प्रेरित करता है कि मेरा अभी और प्रयास करना है ताकि मैं उस सफलतापूर्वक कर दूं। तो ये एकाग्रता को ही आप चाहे अध्यात्म कहें या विज्ञान के प्रति समर्पण कहें। और मुझे लगता है कि वो जैसे आपने एक बहुत फोटो वायरल हुआ था, के सीवन जो अभी इसरो के चेयरमैन है, चंद्रयान 2 के लॉन्च होने के पहले वो जो माधवाचार्य का मठ है वहां पर वो गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे, तो कई सारे जो अपने मीडिया के लोग हैं जो थोड़ा कम्युनिस्ट माइंडेड हैं, उनकी क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि साइंटिस्ट क्यों गया है, साइंटिस्ट उसमें मठ में क्यों गया है उनसे आचार्य से आशीर्वाद लेने, क्योंकि उनकी अपनी बिलीफ थी, वो गए थे, चंद्रयान 2 उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और आशीर्वाद लेकर आए और कम से कम 95% चंद्रयान 2 सफल रहा। और अध्यात्म एकाग्र कर सकता है, डेडिकेट कर सकता है, समर्पित कर सकता है चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए। हाँ, मैं वही बोला कि स्पिरिचुअलिटी और वैज्ञानिक अलग नहीं है, क्योंकि उनका समर्पण है उस कार्य को लेकर, स्पिरिचुअलिटी यही है, समर्पण।
और एक बात निकल के ये भी आ रही कि अभी भी आशा और विश्वास कायम है। 17 सितंबर को आज के न्यूज में था, अमेरिका का ऑर्बिटर वहां से गुजरने वाला है, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन या स्थिति भी प्राप्त हो जाएगी, और उम्मीद तो जरूर रखें। ब्राता जी का एक प्रश्न था, वैसे आपसे जानना
चाहूंगा, मैं इसके बारे में जरा सा कह दूं, मुझे ब्रह्मोस के साइंटिस्ट से मिलने का मौका मिला था पिछले साल, मैंने देखा उनमें से सभी स्पिरिचुअल थे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिन्होंने कुछ इधर उधर की बात की हो। इवन उनके जो डायरेक्टर थे, जब मैं वहां पहुंचा, मैं तो उन्हें जानता नहीं था, डिप्टी डायरेक्टर ने मुझे बुलाया था, कॉन्टेक्ट किया था, मैं डायरेक्टर से कुछ परिचित नहीं था, मैं सोच रहा था कैसे होंगे, साइंटिस्ट हैं भाई, पता नहीं कैसा रेस्पॉन्स करेंगे। पर जैसे ही मैं उनके केबिन में पहुंचा, बड़ा सा रूम था, वो तो खड़े हो गए और जो मैं सुनाता हूं वो मुझे सुनाने लगे, मैं भगवान की संतान, महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। मैंने कहा आपने सर ये कहां से सीखा, कि मैं तो रोज सुनता हूं, हम तो योगी हैं। तो एक साइंटिस्ट भी योगी ही होता है, ये हमें मानना होगा, और हरेक का कुछ ना कुछ बिलीफ होता है।
कहता जी एक बात जो इनकी रह गई थी, सब भावनात्मक रूप से अब भी चंद्रयान 2 से जुड़े हुए हैं, विक्रम से जुड़े हुए हैं, प्रज्ञान से जुड़े हुए हैं, जिनका कहना था क्या आध्यात्मिक रूप से अभी कुछ किया जा सकता
किया
है,
जा
उसे सक्रिय किया जा सके,
किया जा सकता है, किया जा सकता है। जब आप ये प्रश्न पूछ रहे थे तो मेरे मन में कुछ सुंदर विचार भी उठ रहे थे, जो हम सब लोग यहाँ करते हैं, पर इस संदर्भ में हम लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि हमें था कि वो तो पहुंचेगा ही, उसकी असफलता की कोई कल्पना, हमारे यहाँ से भी बहुत लोग जागे थे रात को, और बड़ी खुशी की बात है, भाई साहब भी कह रहे थे ये हमारे देश का विज्ञान के प्रति एक गर्व प्रदान करने वाला एटीट्यूड था, बहुत सुंदर ये बात थी। तो वो ये है, मैं अपने संगठन में अब कहूंगा कि हम लोग रोज आधा घंटा मेडिटेशन के ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस वाइब्रेट आउट करेंगे जिससे वो वैज्ञानिक जो उस कार्य में तत्पर हैं वो सफल हो सके।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, पुनः आशा उम्मीद की एक किरण। अगला प्रश्न मैं चाहूंगा।
नहीं, प्रश्न नहीं है, जो आप लोगों ने अभी बातें करी बहुत अच्छी बात की, उसमें थोड़ा सा ऐड करता हूं कि स्पिरिचुअल आदमी जो है, स्पिरिचुअल की परिभाषा चार दिन में काफी आदान प्रदान हुई है, और राजयोग जो जब करेगा व्यक्ति तो वो रिसर्चर फिलोसफर वही हो जाएगा। स्पिरिचुअल एंड राजयोग से ही आदमी रिसर्चर फिलोसफर हो जाता है, वो रिसर्च और फिलोसफर हो जाता है। ये मेरी
बहुत बहुत शुक्रिया। अपने प्रश्न रखें और भी जो
शांति प्रश्न पर एक बार, जैसे आपने सूर्या भाई ने बहुत अच्छा कहा जो वाइब्रेशन की बात की, जो सफलता मिल सकती है, असल में मुझे लगता है कि अध्यात्म भी एक विज्ञान ही है, सूक्ष्म विज्ञान है, जिसे वैज्ञानिक अपनी तकनीकी साधनों द्वारा समझने और साबित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा विचारकों ने कहा है कि क्रोध करने से पहले उसके परिणाम पर के बारे में विचार करो, क्योंकि क्रोध के बहुत सारे नुकसान हैं। मेरा प्रश्न यह है कि अगर परिणाम देख के ही क्रोध आए तो उसको कैसे नियंत्रित करें?
ब्रह्मा कुमारी में हमें एक बात सीखने को मिलती है कि हमें क्रोध तो बिल्कुल करना ही नहीं है, लेकिन लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है। जहां हम स्नेह से काम लेते हैं वहां थोड़ा एक मर्यादा और कोड ऑफ कंडक्ट को ख्याल में रखते हुए हम बात करें। बात अपनी जरूर रखें समय स्थान और व्यक्ति को देखकर, क्योंकि क्रोध में जब हम अपना मन का संतुलन खो बैठते हैं तो जो हम उसे समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ पाते। पर अगर हम चाहते हैं कि हम उसको उसकी बात को उसे अंडरस्टैंड कराएं, उसका बहुत सही तरीका है कि हम अपना संतुलन पहले स्वयं बना लें, फिर स्थान देखें, समय देखें, समझने वाले का लेवल देखें किस तरीके से बात को समझ पाएगा, उसके बाद अपनी बात को रखेंगे तो जरूर उसका उसमें कामयाबी मिलेगी। और हमारे यहाँ भी पनिशमेंट मिलती है ऐसा नहीं है, परंतु कभी भी इस प्रकार का नहीं होता कि हम किसी के साथ वायलेंस करें या गुस्सा करें, लेकिन ये कहा जाएगा कि आप 2 महीने यहाँ से अवकाश लेकर के घर चले जाएं, और जब आप में सुधार आ जाए तो फिर आप हमें लिखना कि आप अपना चार्ट जरूर दिखाएं कि आपने कहाँ तक सुधार लाया है, और अगर आप में सुधार नहीं आया है तो आपका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इस तरीके से करके उसे ठीक किया जाता है, लेकिन कोई इस तरीके की बात हम नहीं करते जिससे हम हिंसा की कोई बात करें।
मैं थोड़ा अपनी समस्या को लेके प्रश्न पूछा था, जो आजकल जन सामान्य की समस्या है, जो बच्चे को करियर में जो गए हैं, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई में आजकल जैसे मोबाइल गेम वगैरह है, रात भर लगे रहते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों का नुकसान हो रहा है, इनको हम कैसे उस लाइन से अलग करें, किस तरह से उनको प्रेरित करें कि वो अपने मतलब लक्ष्य की ओर जाएं या अपना लक्ष्य निश्चित करें, क्योंकि एक भटकाव की दिशा में एक नया पीढ़ी जो है जो उसे छात्र है वो जा रहा है अधिकांश।
एक्चुअली ये जो बात इन्होंने पूछी है, हम किसी पर अपने विचारों को इम्पोज नहीं कर सकते, वी ओनली कैन इंस्पायर। और इंस्पायर कैसे, इंस्पिरेशन मिलेगी हमारे अपने कैरेक्टर से। जैसे इन्होंने पहले भी डॉक्टर साहब ने बताया कि मैनेजमेंट में भी आप कुछ उन्हें दिखाएं और सामने वाले का किस चीज में इंटरेस्ट है पहले हम वो देखें। तो बच्चे की बात को पहले हम सुने, उसको कॉन्फिडेंस में लाएं। और आजकल जो पेरेंट्स का एक ही नजरिया है कि बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे जाने चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे पढ़ाई में पीछे नहीं रहने चाहिए, लेकिन हम लोगों में कहते अच्छी पालना वो है 3 बातों का ध्यान रखा जाए, पढ़ाई, सेहत और चरित्र। बच्चे की सेहत बहुत अच्छी हो, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो, उसका चरित्र बहुत ऊंचा हो,
और उसके लिए हम सबको सजेस्ट करते हैं कि आप स्वयं भी यहाँ पर मेडिटेशन राजयोग का अभ्यास करें, आपको देखकर आपके बच्चे उसका अनुसरण करेंगे, उसके बाद आपको उसको कोई भी शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप उसे वो फॉलो करेंगे और उसी चरित्र से आगे बढ़ेंगे। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो पेरेंट्स इस सेवा केंद्रों पे आते हैं और कुछ करते हैं मेडिटेशन, घर में भी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, बच्चे उसका अनुसरण करते ही करते हैं, और विश्व में बच्चे कहीं भी चले जाएं सुरक्षित हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि उन्हें ऐसी सस्टेनेंस मिल रही है। यहाँ पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाता है, अपने शरीर को कैसे मेंटेन करना है, और साथ साथ में चरित्र पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो कई बार माता पिता की बात बच्चे नहीं समझ पाते, पर यहाँ पर आने के बाद उन्हें प्यार भी मिलता है और टीचर के रूप में शिक्षा भी मिलती है, तो उन्हें ज्यादा वो इन बातों को रिटेन कर पाते हैं और अपनी धारणा कर सकते हैं।
ओम शांति। सम्माननीय गाइस, यहाँ पर बहुत सारे माताएं पिताजी आए हुए हैं। मैं आर पाटिल एडवोकेट जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। हमारे तरफ भी जूनियर एडवोकेट सीखने को आते हैं, उनको हम बहुत सारे सिखाते भी हैं, लेकिन वो सीख गए तो उनको ईगो हो जाता है कि मेरे सीनियर को कुछ आता ही नहीं। वैसे ही अपने लड़के लड़कियां, उनको भी अपन पालन पोषण करते हैं, सिखाते हैं, बहुत कुछ उनके लिए करते हैं, लेकिन वो बड़े होते हैं, जब बोलते हैं मेरे माताजी पिताजी ने अपने लिए क्या किया, तो मेरा ये पूछना है कि ऐसा क्यों होता है और इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है?
सर, इसका सॉल्यूशन है कि आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। सारा समस्याओं का जड़ है, मैं आपको अपने प्रैक्टिकल उदाहरण से बताता हूं। मैं पीएचडी कराता हूं, बायोफिजिक्स का प्रोफेसर हूं। हमारे यहां ऐसा होता है, उसको हम फोर्थ ईयर सिंड्रोम बोलते हैं। चौथे साल में जब स्टूडेंट पहुंच जाता है, उसको ऐसा आभास होने लगता है कि उसको अपने गाइड से ज्यादा आता है, ठीक है? और ये आभास होना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होने दीजिए उसको आभास कि उसको अपने गाइड से ज्यादा आता है। अगर उसमें ये बिलीफ आ गया कि उसको अपने गाइड से ज्यादा आता है, तो कुछ नया कर सकता है जो आप नहीं सोच रहे हैं। और इस तरह कई बार वो न सुनने वाले स्टूडेंट्स कुछ ऐसे फील्ड में, मैंने आपके रिसर्च में कुछ ऐसा नया चीज करते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये अच्छा है कि वो आपको सोच रहे हैं कि उनको नहीं आता, उनको ईगो बढ़ गया। लेकिन वही स्टूडेंट जब आपके यहां से चले जाते हैं दो चार साल बाद, आपके प्रति उनके मन में श्रद्धा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो उस समय जाने के बाद उनको समझ में आता है कि आपने जो बोला वो सही बोला था, और इससे उनके जीवन में काफी सुधार आता है और वो बाद में आपको सम्मान देने लगते हैं। जूनियर्स का भी यही सवाल है। बच्चे, जहां तक है कि बच्चे नहीं सुनते हैं बात, ये इससे पहले वाले भी बोल रहे थे। अगर मान लीजिए मोबाइल, मैं मानता हूं डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल टीवी सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है। मैं जैसा कि बताया IIT बॉम्बे का प्रोफेसर हूं, यहां पर IIT में आपको पता ही है कितना हाई स्टेक है। पेरेंट्स सारे लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा IIT में चला जाए, BTEC करने चला जाए। वो एक मैजिक ब्लैक बॉक्स है जिसमें बच्चा घुसा और उधर से करोड़ों का पैकेज लेकर निकला। और ये समस्या हमारे लिए बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आप जो बच्चा कुछ और करना चाहता था, उसको किसी तरह प्रेशर देकर इमोशनल, फाइनेंशियल या एक्सपेक्टेशन से भेज तो देते हैं, लेकिन वहां वो जाकर पूरी तरह उन्मुक्त हो जाता है और जो करना चाहता है करता है, ठीक है? तो बाद में आपका भी एक्सपेक्टेशन लो हो जाता है, हमारा भी एक्सपेक्टेशन लो होता है, और जो करने के लिए आप भेजे थे, हम सोच रहे, वो नहीं कर पाता है। इसलिए बच्चा जो चाहता है उसको करने दीजिए। अगर मोबाइल वो देख रहा है तो आप उसको चैलेंज करिए कि मोबाइल में एक नया गेम कोड करे। हो सकता है आपका बच्चा पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में चला जाए। अगर गेम नहीं, अगर मान लीजिए वो नया सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, एक ऐप डेवलप करता है, हो सकता है उसका ऐप बहुत ही खूबी भरा हो और जितने ऐप है उनको आउटडेट कर दे। तो जो वो करना चाहता है उसको करने दीजिए, उसमें एक्सेल करने दीजिए। हम जो चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सारे लोग वो करें। समाज विविधताओं से भरा है, सब जगह लोगों की जरूरत है। खाना बनाने वाला भी बहुत नाम हो सकता है, जैसे संजीव कपूर। तो एक बुरा इंजीनियर बनने से अच्छा है कि एक अच्छा कुक बने। जस्ट मैं उदाहरण बल किसी फील्ड में अगर वो अच्छा करे तो बहुत ही अच्छा है, चाहे फील्ड जो भी है। इसलिए मुझे लगता है कि आप उसको उसके नेचुरल जो स्ट्रेंथ है उसमें बढ़ने देना चाहिए। सारे पेरेंट्स लोगों को, अभी तो मैं यंग पेरेंट्स हूँ, आप लोग सीनियर पेरेंट्स हैं, तो मेरा यही सुझाव रहेगा जो चीज में वो उसकी स्ट्रेंथ है उसके स्ट्रेंथ को नर्चर करिए, उसको बाधित मत करिए, फिर वो फोर्स कहीं डिस्ट्रैक्शन में चला जाएगा।
मैं स्पिरिचुअली कुछ कहना चाहता हूँ इसके उत्तर में, थोड़ा सा, ज्यादा लंबा नहीं। डॉक्टर साहब जो कुछ कह रहे हैं वी ऑल अप्रिशिएट हिम, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल मोबाइल और ये सब चीजें जो आप जानते हैं ऐसा एडिक्शन बन गया है जिससे अनेक युवक डिप्रेशन की ओर भी जा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी माताएं आती अपने छोटे बच्चों को लेकर जैसे आगे बैठे हैं कि ये तो सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती है, पढ़ने में ध्यान नहीं देती, ये सब बातें आती हैं, या बच्चे नहीं मानते या ईगो बहुत बढ़ता है। वो जो भाई साहब ने ईगो की बात की वो तो बहुत अच्छी है कि अगर चौथे ईयर में पहुंचकर उनको होता है हमारे प्रोफेसर गाइड कुछ नहीं जानते, हम ज्यादा जानते, तो वो ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन अगर बच्चे माँ बाप के प्रति ये दृष्टि अपना लें तो थोड़ा सा गड़बड़ संबंधों में होती है, व्यवहार बिगड़ जाते हैं। मैं इसका एक उत्तर देना चाहता हूं जो बहुत प्रैक्टिकल है, और अगर आप करेंगे ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हमारी स्पिरिचुअलिटी में एक अभ्यास है स्वमान का, सेल्फ रेस्पेक्ट, जिससे हमारी सेल्फ स्टीम एस्टीम बढ़ जाती है, हमारे बोल में पावर आ जाती है। और जब हम ऐसे बच्चे को जो मोबाइल का एडिक्ट हो गया है बहुत अच्छे शब्दों में अच्छी भाषा में उसको सम्मान देते हुए, ऑर्डर नहीं है, मोबाइल नहीं देखना, ये सब बेकार है, ये नहीं, उसकी भावनाओं को सम्मान देते हुए ताकि उसकी भावनाएं हर्ट ना हो, हम स्वमान का अभ्यास करते हुए यदि उसे अच्छी बात कहते हैं तो हमारे बोल में बहुत पावर होती है। हमारे बोल के साथ हमारे वाइब्रेशंस भी दूसरों को जाते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी अच्छी बात को अच्छा मानकर स्वीकार करता है। मैं सिखाता हूं और बहुत बच्चों का छूट जाता है। दूसरी बात, इसी स्वमान का एक सुंदर रिजल्ट होता है, स्वमान में रहने से हमारा सम्मान बहुत बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। आप स्वमान में स्थित हो जाओ, आपके बच्चे भले ही सोचते हो हमारे मम्मी पापा तो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन वो आपका बहुत सम्मान करेंगे, चाहे वो आपसे ज्यादा एजुकेटेड हो गए हों, चाहे वो आपसे ज्यादा धन कमा रहे हों, चाहे उनका मान ज्यादा हो रहा हो समाज में, लेकिन वो उतने ही पोलाइट बने रहेंगे और आपका सम्मान करेंगे। इसलिए स्वमान को बढ़ाना स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ये इन सभी समस्याओं का एक बहुत प्रैक्टिकल हल है।
तारयुक्त सुंदर की बात। अंतिम प्रश्न ले रहे हैं, फिर हमें मेडिटेशन भी करना है। बार बार बात निकल के आ रही है कि हम अपने मन के तारेश्वर से जोड़े, अध्यात्म की ओर चलें, तो उसका सुंदर अनुभव भी हम करेंगे, इसलिए अंतिम प्रश्न हम ले रहे हैं। जी
इसमें एक अभी एक ये प्रश्न आया था विज्ञान के संदर्भ में कि असफलता के बाद क्रोध आता है। मैं उस संदर्भ में कहना चाहूंगा, एक अपने व्यू शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के सही रिप्लाई के साथ साथ भी। 85 में मैं ऑल इंडिया रिसर्च एसोसिएट एसोसिएशन, जो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च होती है, उसका नॉर्थ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी था। तो मैं बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ गया। लखनऊ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा देखा जो हर रिसर्चर पर एप्लीकेबल होता है कि रिसर्च इज 1% इंस्पायरेशन एंड 99% परस्पायरेशन। और प्रोफेसर साहब भी एग्री करेंगे, जो भी रिसर्चर होता है सही मायने में वो आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाता है। सफलता असफलता उसके रास्ते में कुछ नहीं होती, जो मेहनत कर सकता है वो करता है, लेस डिपेंड्स ऑन लक। और ये भी मैं एग्री करता हूं और ये मेरा अपना अनुभव भी है, राजयोग अथवा मेडिटेशन किसी भी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट आपको निकलेंगे। और कंसंट्रेशन हर साइंटिस्ट में होती है, चाहे सोशल साइंस हो या नेचुरल साइंसेज हो। थैंक यू वेरी मच,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल लास्ट प्रश्न। हाँ जी भाई, आप भी आ जाइए, आप दोनों ही प्रश्न रख लें। जी
ओम शांति। generally in this society where we are living, the perception of every individual is different. Okay. So since we have a very beautiful environment over here, so it seems so easy and easy going over here. But when we are back to our society, our area, and we are back to our place, the situation over there is quite different. And first of all, many people will not agree with our perception, and that is right. They have their own way of thinking, and we have our own way of thinking. But when if they are our near and dear one, it becomes very difficult, and it creates a lot of conflict every now and then. And secondly, as you are saying, we should not keep any expectations. We don't keep any expectations, but our near and dear ones, they always keep an expectation. So that is also an issue.
Tata ji, kya kahenge?
मैं इसमें आपको एक चीज कहूंगा, भाई क्वेश्चन तो सभी ने समझ लिया होगा, यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन हर मनुष्य को ये सोचना चाहिए, आई एम द क्रिएटर ऑफ वाइब्रेशंस, हम सभी क्रिएटर हैं, आप अपने चारों ओर सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं. एक्सपेक्टेशंस की बात बड़ी लंबी चौड़ी है, रखते भी हैं, रखना भी चाहिए. अभी आप जनरल मैनेजर हैं, आप अपने नीचे वालों से एक्सपेक्टेशन तो रखेंगे ही, बिना उसके तो काम कैसे चलेगा. माँ बाप भी बच्चों से रखेंगे, वो अलग फील्ड है, वो एक टारगेट होता है. दूसरे लोग भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं बहुत कुछ, लेकिन हमें इस सत्य को मान लेना चाहिए कि सभी लोग सभी के एक्सपेक्टेशंस को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो किसी और से कर रहे हैं, वो किसी और से कर रहे हैं. तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम भी करना चाहिए, और लोग अगर हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना सहज भाव से हम कर सकें अपनी क्षमताओं के अनुसार, जिम्मेदारियों के अनुसार, हमें उनको पूरा करना भी चाहिए. बाकी ये बात आप ध्यान से सुनी ली होगी, वी आर द क्रिएटर, हम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं.
जी, लास्ट प्रश्न.
ओम शांति. मेरा नाम बीएल कोल्ली, कर्नाटक बेलगाम से आया हूँ. मेरा एक प्रश्न है, तीन दिन से हम मेडिटेशन और राजयोग के बारे में और उनके उपयोग के बारे में बहुत सुनाए हैं, मगर मेरा डाउट है, राजयोग और मेडिटेशन दोनों अलग है और एक है? अलग है तो राजयोग कैसा करना, ऐसा इसका मेथड ऐसा विवरण दो कि मेरे जैसा सामान्य आदमी को वो करना आसान होगा.
राजयोग मेडिटेशन, इट इज नॉट मियरली ए कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइज, बट इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन गॉड. क्योंकि योग का मतलब है कनेक्शन और कम्युनिकेशन, एंड राजयोग का मतलब कनेक्शन विद द सुप्रीम. यहाँ राजा शब्द सुप्रीम पावर के लिए आया है, और सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी केवल केवल और केवल एक परमात्मा ही है. आध्यात्मिक शब्दों में कहेंगे आत्मा का परमात्मा से मिलन राजयोग है. बड़ी सरल विधि है कि सबसे पहले हम राजयोग में स्वयं के वास्तविक स्वरूप या रियल सेल्फ में स्थित होने का अभ्यास करें. आज दिन तक हम अपने आप को शरीर कंसीडर करते थे, आज हमें समझ में आया कि हम शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा है. केवल रिपीट नहीं करना है, लेकिन कार्य क्षेत्र पर भी आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है. आप सोचेंगे कैसे? आत्मा का कोई एक गुण, क्योंकि आत्मा सात गुणों का मिश्रण है. पहला, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और शक्ति स्वरूप है. ये मेरी ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स हैं, कोर वैल्यूज हैं. अगर मैं इन सातों में से किसी एक गुण का अभ्यास करूं, से आई एम ए पीसफुल सोल, सवेरे लक्ष्य रखूं कि आज पूरा दिन जितनी भी आत्माएं मेरे संपर्क में आएंगी, मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, शांत स्थिति में स्थित होकर, सबसे शांति से व्यवहार करूंगी,
और ये अटेंशन धीरे धीरे नेचुरल आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाएगा। और धीरे धीरे जैसे आप आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते जाएंगे, फिर सेकंड स्टेप आता है कि हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करें। तो अभी तक हम जो परमात्मा को याद करते थे उससे कुछ कुछ डिमांड करते थे, कुछ इच्छा रखते थे, कुछ मांगते थे, लेकिन आज हमें समझ में आया कि परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं। तो हम याद बड़े सरल तरीके से करते हैं, मैं आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा की संतान हूं, मेरे पिता प्रेम के सागर हैं, मैं आत्मा उस शिव पिता की संतान प्रेम स्वरूप हूं, मेरे पिता शांति के सागर हैं, मैं शांत स्वरूप हूं, मेरे पिता पवित्रता के भंडार हैं, मैं आत्मा उनकी संतान पवित्र स्वरूप हूं। इस प्रकार से हम लोग सकारात्मक चिंतन से आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि मेरे पिता और मुझ आत्मा में क्या क्या समानता है, क्योंकि कम्युनिकेशन में दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस नहीं चाहिए, नीदर आई शुड हैव इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नॉर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अभिमान भी नहीं और हीन भाव भी नहीं। अभी तक या तो हम अपने को शिव अहम कहते थे, मैं शिव हूं वही तुम हो, तो अपने को गॉड कंसीडर करना ये अभिमान है, और अपने को नीच पापी कहना ये हीन भाव है। लेकिन आज समझ में आया आई मस्ट मेंटेन माई सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं वास्तव में क्या हूं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थित होके मुझे अपने पिता को याद करना है संबंध से। तो संबंध से जब हम याद करते हैं तो उसमें और मेरे में समानता क्या है, मैं निराकार ज्योतिबिंदु आत्मा हूं, मेरे पिता भी निराकार ज्योतिबिंदु हैं, रूप भी समान है, मेरे पिता परम धाम के निवासी हैं, मैं आत्मा भी परम धाम की ही वासी हूं, मैं आत्मा चमकता दिव्य सितारा हूं, मेरे पिता परमात्मा भी चमकता हुआ दिव्य सितारा। केवल अंतर कितना है कि उनकी जो परमात्मा हर गुण का सागर है और मैं उसका स्वरूप। तो जब हम गुणों में समानता, नाम में समानता, रूप में समानता, धाम में समानता, ये स्वरूप में स्थित होकर के उनको याद करेंगे तो हम उस याद का आनंद ले सकते हैं। इसका अभ्यास जरूरी है, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते अभ्यास करें। और बहुत अच्छा समय है कि सवेरे, वैसे हम लोगों का अभ्यास का समय 4 से 4:45 बजे तक होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इतना जल्दी अगर नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, जिस समय आपकी आंख खुलती है उठते ही आप गुड मॉर्निंग करें। हम परमात्मा को प्यार से बाबा कहते हैं, इज माई फादर, गुड मॉर्निंग बाबा। फिर हम बैठकर अपने स्वरूप में स्थित होकर उसको कुछ क्षण याद करके अपने बिस्तर से उठें, और फिर खास जितना समय आपके पास है 15 मिनट 20 मिनट अभ्यास करें, तो इस प्रकार का अभ्यास आपको सहज योगी बनाएगा। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और शिविर आप लोगों की सुबह हो ही रहे हैं, जिसमें कि राजयोग की और गहराई कल सुबह भी आप लोग सत्र में सुनेंगे। और अब चूंकि वक्त हो रहा है इसीलिए मैं अपनी बहनों से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी जो पैनलिस्ट हैं उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे, और हम सब भी हमारी पैनलिस्ट ने जो इतने सुंदर हमें समाधान दिए हैं उसके लिए क्या करेंगे, एक हाथ से ताली बजाकर इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने बहुत प्यार से हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह हमारे सभी पैनलिस्ट को प्रदान करें। और अंत में जिसकी लगातार हम बात कर रहे हैं सत्र के शुरू से लेकर के प्रारंभ से, जब भी आप आए हैं दीदी ने भी अभी कहा, परमात्मा से मन के तार जोड़ना। डॉक्टर आशुतोष जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रही हैं हमारी बहनें, हम तालियों से अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलें अब कुछ पल परमपिता परमात्मा की याद में हम गहन मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। हमारी एकता बहन जी हमें उस परम सत्ता से जोड़ेंगे और साथ ही जिन समस्याओं की बात हो रही थी उनका सहज निदान हम उनसे कैसे ले सकते हैं, कैसे अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं, उसकी ओर हमें ले चलेंगी आदरणीय एकता बहन जी।
ओम शांति। सभी सीधे बैठ जाएं, अपनी बैक को स्ट्रेट रखें। अब हम चलते हैं अपने अंतर जगत की ओर। बहुत सारी समस्याओं से उलझे हुए, बहुत सारे विचारों को लिए हुए हम यहां आए हैं। अपने इन विचारों को ऑब्जर्व करें। उन्हें आने दें और जाने दें। धीरे 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 विचारों की संख्या कम होने लगी है। और अब मेरे मन में सिर्फ एक ही संकल्प है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरे मन के मानस पटल पर सिर्फ यही अंकित हो गया है और मैं जैसे जैसे सिर्फ इस विचार को गहन चिंतन कर रहा हूं, शांति की किरणों की ऊर्जा मुझ आत्मा से प्रवाहित होने लगी है। मेरा पिता परमात्मा जो कि शांति का सागर है, अपने आत्मा उस पिता परमात्मा से कनेक्ट हो रही हूं। और महसूस कर रही हूं सूर्य के समान अनंत शांति के प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा में उस पिता परमात्मा से प्रवाहित होने लगी है। खुली हुई अपने आत्मा जब अपने कर्म क्षेत्र पर आ रही हूं, अपने ओर की उन्हीं परिस्थितियों को देख रही हूं, ये परिस्थितियां सब मुझे छोटी लग रही हैं और अब मैं बहुत आसानी से हर परिस्थिति को सुलझाने की क्षमता रख रही हूं, क्योंकि हर परिस्थिति का पॉजिटिव नेगेटिव मेरे सामने है। थैंक यू गॉड टू गिव मी अ पावर ऑफ दीज टू कोप अप विद ऑल द प्रॉब्लम्स। थैंक यू।